Oh, Yeah. तुलसी महारानी, हे वृंदा, हे भक्ति माँ, हे नारायणी, मैं तुमको बारंबार नमन करता हूँ। तुम्हारा दर्शन करके अथवा तुम्हारा स्पर्श करके सारे पाप विनष्ट हो जाते हैं। वेद और पुराण तुम्हारी महिमा का वर्णन करते हैं। तुम्हारी पत्तियाँ तथा कोमल मंजरियाँ श्रीपति नारायण के चरण कमलों में लिपटी रहती हैं। हे तुलसी मैया, तुम धन्य हो, तुम्हारा तप पूर्ण हुआ है। अब तुम श्री शालिग्राम जी की पटरानी बन गई हो। जो तुम्हें धूप, दीप, नैवेद्य व आरती अर्पण करता है, उसे तुम प्रफुल्लित करके उस पर दया की बौछार कर देती हो। तुलसी पत्र के बिना भगवान 56 भोग या 36 व्यंजनों में से एक की भी परवाह नहीं करते हैं। शिव, शुक, नारद, देवर्षि तथा ब्रह्मा सहित समस्त महामुनि ज्ञानी तुम्हारी परिक्रमा करते हैं। हे मैया, हे महारानी, चंद्रशेखर इस प्रकार तुम्हारा यश गाता है। कृपया मुझे भक्ति का दान करो। श्री तुलसी आरती की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। अच्छा है ना भजन? सबने सुना है ना पहले इसको कि नहीं?
नहीं,
नहीं सुना? कितने भक्तों ने पहली बार सुना? अनेक भक्तों ने। ये हमारे वैष्णव आचार्यों के गीत में है ये भजन। तो हमारे लिए तुलसी महारानी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि वो भगवान की भक्त हैं। हम सुबह को प्रार्थना करते हैं कि तुलसी महारानी कृष्ण के लिए बहुत प्रिय हैं, वृंदायाय तुलसी देव्याय प्रियायाय केशवस्य च, जो केशव के लिए बहुत प्रिय है वृंदा देवी या तुलसी महारानी केशव श्री कृष्ण के लिए बहुत प्रिय है। वृंदायाय तुलसी देव्याय प्रियायाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवर्त्यै नमो नमः। तो मैं उनको नमन करता हूँ क्योंकि वो विष्णु भक्ति या कृष्ण भक्ति हमको प्रदान कर सकती है। तो ये कृष्ण भक्ति प्रदायिनी है तुलसी महारानी। वैसे गोलोक वृंदावन में ये वृंदा देवी है और वैकुंठ जगत में तुलसी महारानी जी करके जानी जाती है और भौतिक सृष्टि में भी तुलसी देवी करके जानी जाती है। तो अभी जब पुरुषोत्तम अधिकमास समाप्त हुआ तो तुलसी दल जान जल दान भी समाप्त हुआ। तुलसी और शालिग्राम के ऊपर जल का अर्पण होता है एक महीने तक, आपको पता है ना, एक महीना तुलसी जल दान का महीना होता है। तो ऊपर एक बर्तन रखा जाता है, उसमें एक छेद होता है नीचे और बूंद बूंद करके पानी गिरते रहता है तुलसी महारानी के ऊपर और शालिग्राम के ऊपर। तो शालिग्राम और तुलसी महारानी का विवाह हुआ है, शास्त्रों में ऐसे वर्णन है। इसलिए यहाँ पे चंद्रशेखर आचार्य कह रहे हैं कि तुलसी महारानी ने बहुत प्रार्थना की थी कि मेरे को विष्णु ही चाहिए पति के रूप में। तो ऐसे अनेक लीलाएं हुई, उसके बाद उनको विष्णु ही शालिग्राम के रूप में पति के रूप में आ गए। इसलिए यहाँ चंद्रशेखर आचार्य बताते हैं धन्य तुलसी मैया पूर्ण तप किए। तुलसी मैया धन्य हो, आप अनेक वर्षों से प्राचीन काल से अब तप तपस्या करती आई हैं, इसीलिए क्या हुआ श्री शालिग्राम महापटरानी। तो श्री शालिग्राम जो कि भगवान विष्णु हैं उनकी पत्नी आप बन गई हो। जाका पत्र मंजरी कोमल श्रीपति चरण कमले लपटानी, मतलब आपके जो पत्तियां हैं आपके मंजरी हैं वो भगवान नारायण के चरण कमलों में लिपटी रहती हैं। भगवान कृष्ण को तुलसी बहुत प्रिय है, अर्पण करें अर्चना विधि में तुलसी का बहुत महत्व रहता है। भगवान के चरण कमलों में चंदन लगा के तुलसी अर्पण करते हैं और भगवान को तुलसी का माला भी अर्पण करते हैं, तुलसी मंजरी तुलसी दल आदि। तुलसी इतनी प्रिय है, भले अन्य कुछ ना हो तुलसी हो तो भगवान संतुष्ट रहेंगे। इसलिए यहाँ वो कह रहे हैं 56 भोग 36 व्यंजन बिना तुलसी प्रभु एक नहीं माने। यदि आपने सब स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन दे दिए परंतु तुलसी पत्ता उसमें नहीं हुआ तो भगवान परवाह नहीं करते, स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे कथा याद आ रही है, ऐसे कहीं सुना था बहुत साल पहले कि द्वारका में, आपको पता है ना कर्नाटक आंध्र में भी ऐसे प्रथा है कि किसी को सोने के तुलाभार बोलते हैं। तो एक तुल वो एक बाजू में बैठते हैं और सोना का वजन होता है, जितना उसका वजन है उतना सोना या कुछ दान में देते हैं। तो कृष्ण को ऐसे करने जा रहे थे तो कृष्ण का वजन इतना बढ़े कि कोई सीमा ही नहीं, फिर क्या किया जाए। फिर किसी ने तुलसी का एक पत्ता रख दिया, सब ठीक हो गया, वजन बराबर हो गया। रुक्मणी देवी
ने रखा वजन,
हाँ हाँ ऐसे सुना। तो भगवान को तुलसी बहुत प्रिय है, हर भोग में हो उनको, उनके श्रृंगार में हो, पूजा विधि में हो, इसलिए चैतन्य चरितामृत में बताया जाता है कि अद्वैत आचार्य जब देख रहे थे कि कलयुग में क्या दशा है और वो सोच रहे थे कि ऐसी दशा को केवल भगवान ही ठीक कर सकते हैं और कोई ठीक नहीं कर सकते, तो भगवान को ही अवतार लेना होगा। भगवान अवतार नहीं लेंगे तो ये सब समस्या हल नहीं हो सकता है। तो रोज वो तुलसी का दल और गंगा जल अपने शालिग्राम को अर्पण करके जोर जोर से पुकारते थे भगवान को कि आप अवतीर्ण होइए, और साथ साथ ये एक श्लोक बोला करते थे। किसी को याद है कौन सा है वो श्लोक? तुलसी
दल
मात्रेण, करेक्ट, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणिते स्वम आत्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। ये पुराणों का श्लोक है। इसका मतलब ये है कि तुलसी दल मात्र, दल मतलब पत्ता, तो तुलसी दल मात्र यदि हो और जलस्य चुलुकेन वा, अपने मुट्ठी में जितना गंगा जल आता है उतना ही यदि हम तुलसी भगवान को अर्पण करते हैं, एक तुलसी दल और थोड़ा सा गंगा जल साथ में, इतना है, थोड़े बूंद गंगा जल, तो क्या होता है? विक्रीणते स्वम आत्मानम, भगवान अपने आप को विक्री कर ला, बेच डालते हैं। स्वम आत्मानम, भगवान उपासक को, भक्त को अपने आप को बेच डालते हैं, उपासक के हवाले कर देते हैं। भक्तेभ्यो, जो उनका भक्त है, जो इस प्रकार से उनकी उपासना कर रहा है, उनके हवाले कर देते अपने आप को भगवान, बेच डालते हैं, क्योंकि वो भक्त वत्सल हैं, भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए शीघ्र ही वो संतुष्ट होके भक्तों से खरीदे जाते हैं। तो भगवान को खरीदा जा सकता है परंतु धन से नहीं। तुलसी, गंगा जल और सबसे महत्वपूर्ण भक्ति, भक्तेभ्यो, जो भक्त ऐसा करते हैं, तुलसी अर्पण करते हैं, तो बहुत जल्दी भगवान आकर्षित हो जाते हैं। तो ये है तुलसी का महत्व। तो जो भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं अपनी भक्ति में, तुलसी महारानी की सेवा भी अच्छी करनी चाहिए। तुलसी महारानी को हम संतुष्ट रखेंगे, प्रसन्न करेंगे, तो वो हमको भक्ति दान दे सकती हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमारे संस्था में तुलसी आरती के लिए विधि बनाई, रोज तुलसी पूजा, ताकि हम याद रखें कि तुलसी महारानी का कितना महत्व है। पहले वैदिक सभ्यता में हर घर में तुलसी महारानी अवश्य हुआ करती थी। हम जब दक्षिण कन्नड़ा में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं आज भी हर घर के सामने आंगन में तुलसी होता है, लेकिन यहाँ ऐसे हाँ ऐसा है, लेकिन जो पहले जैसे हर घर के सामने हुआ करता था, जगह जगह, कहीं इधर उधर देखेगा, गांव में किधर, शहरों में तो थोड़े जो पुण्यवान धार्मिक लोग होते हैं उनके घर में दिखाई पड़ता है, परंतु पहले तो नियम था, हर घर में हुआ करता था, हर घर के आंगन में, और हर एक ब्राह्मण के घर में शालिग्राम भी हुआ करता था, और हर एक ब्राह्मण शालिग्राम की उपासना तुलसी महारानी की सेवा भी करते थे। लेकिन आज तुलसी महारानी की सेवा शहरों में तो नहीं हो पाती है, थोड़े बहुत श्रद्धालु लोग किसी न किसी तरह से करते होंगे, लेकिन अधिकतर देखा जाता है कि तुलसी महारानी की सेवा से लोग अभी दूर चलते जा रहे हैं। जो कृष्ण भक्त नहीं हैं वो लोग भी करते हैं, क्योंकि वैदिक सभ्यता में आता है, और विशेष करके जो कृष्ण भक्ति करते हैं उनके लिए तो तुलसी महारानी की सेवा बहुत आवश्यक है। विदेशों में जैसे रशिया आदि में इतनी ठंडी होती है इतने महीनों तक, तो तुलसी महारानी ऐसी ठंडी को सहन नहीं कर सकती। तुलसी महारानी को जल चाहिए और थोड़ी उष्णता चाहिए, प्रकाश भी चाहिए। तो वो क्या करते हैं कि एक विशेष कमरे में उनको रखते हैं, जहाँ हीटर आदि लगा के रखते हैं और लाइट और बल्ब जला के रखते हैं, और ऐसे तरह इस तरह से वो तुलसी महारानी को की सेवा करते हैं, जीवित रखते हैं। तो देखिए रशिया में, अलग अलग ठंडे देशों में जहाँ पहले तुलसी की सेवा नहीं हुई हुआ करती थी प्रभुपाद जी के कृपा से, इतने जगह अभी लोगों को तुलसी की सेवा का लाभ मिल रहा है। मुझे याद है कि एक बार हम मॉस्को में गए थे रशिया में, कई साल पहले पहली बार जब हम गए थे, तो एक भक्त हमको कोई कार्यक्रम के लिए ले जा रहे थे उनके घर में, उनके गाड़ी में कोई गड़बड़ हो गई तो हमको टैक्सी में ले गए। तो टैक्सी में जा रहे थे हम, टैक्सी ड्राइवर के पास में बैठे थे, वो भक्त नहीं था, इस्कॉन से उसका कोई संबंध नहीं था। तो अचानक उसने कहा, मैं तुलसी जानता हूँ, वो रशियन में कहा, मुझे केवल तुलसी समझा, लेकिन बाकी क्या वो भक्त ने बताया कि ऐसे बोल रहे कि मुझे तुलसी जानता। मुझे आश्चर्य हुआ, अरे ये तो भक्त भी नहीं है, इस्कॉन का भक्त भी नहीं है, कोई भक्त नहीं है, तुलसी कैसे जानता है। तो मैं भारतीय संस्कृति में बहुत रुचि रखता हूँ, मैं तुलसी मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए कैसे कैसे कहाँ कहाँ तुलसी महारानी की कृपा चलती है। वो व्यक्ति अवश्य कभी ना कभी एक दिन तो भक्त बनेगा, क्योंकि तुलसी महारानी के प्रति ऐसे अनुकूल भाव उसके हृदय में है। जैसे तुलसी महारानी को भी हमें अच्छी तरह से सेवा करना चाहिए, रोज अच्छी तरह से पूजा करनी चाहिए। हरे कृष्णा। वैसे आज क्लास नहीं, क्योंकि भजन ही ऐसे निकला, फिर थोड़ी चर्चा
महाराज गोलोक वृंदावन में वृंदा देवी करके,
वृंदा देवी है
वैकुंठ में तुलसी महारानी, जगत में तुलसी देवी,
तुलसी महारानी वही तुलसी देवी, वृंदा देवी वहाँ मदद करती हैं भगवान की लीलाओं को की व्यवस्था करने के लिए। वृंदा देवी, वृंदा देवी के पीछे तो नाम है वृंदावन, वृंदा देवी का स्थान है कृष्ण की भूमि, वृंदा देवी का स्थान है वृंदावन, वृंदा का वन, जहाँ वृंदावन वृंदा का वन है वो है वृंदावन। तो तुलसी कितना महत्व का है हम समझ सकते हैं। अच्छा, हरे कृष्णा, इसलिए इतने सुखी है हमेशा।
महाराज एक बार एक स्टूडेंट ने, मेडिकल स्टूडेंट ने एक बार सवाल पूछा था, वो इसे इसकन कभी कुछ सीढ़ी वगैरह निकालते हैं, उसमें तुलसी महारानी का कैसे विवाह हुआ है सब दिखाता है ना, जलंधर असुर के साथ सब दिखाता है, तो वो अलग अलग तरह से सवाल पूछने लगा। तो भगवान ऐसे क्यों किया, तो दूसरे के साथ विवाह हुआ, फिर भगवान इसके साथ तो दूसरा सदमा बेस में जाके उसका सतीत्व हरण किया, तो उसका मृत्यु हो गया ऐसे। तो महाप्रभु बोल रहे थे कि ये जो घटना के ऊपर हम लोग का जो वैष्णव आचार्यगण उसके ऊपर कुछ टीका नहीं किया अभी तक,
इसलिए हम ये कहानी ज़्यादा बोलते नहीं हैं।
हाँ,
इसलिए आज भी हमने वो कहानी बोली नहीं है।
तो इसके कैसे
ये इसमें ज़्यादा गलत भी लोग समझ लेते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता है, और जो भी जब हमें कोई इसके बारे में बताया नहीं गया है तो इसको हम ज़्यादा प्रचारित नहीं करते हैं। और जो भी है भी ये सब केवल लीला है भगवान की, भगवान की अद्भुत लीलाएं हैं सब, हम इनको समझ नहीं सकते हैं। भगवान अपने आंतरिक कारणों के लिए सब अपनी अपनी लीलाएं करते हैं। उनके धाम में तो उनका नित्य संग है ही, वृंदा देवी तुलसी महारानी तो भगवान के साथ ही हमेशा है। जो भी ये लीला पढ़ेगा वो अवश्य विचलित हो जाएगा। अवश्य सोचेगा ये क्या है, और जो भक्त हैं वो तो समझ लेंगे ठीक है ये भगवान की लीला, जो नहीं में वो नहीं समझ पाएंगे, इसलिए इस लीला को हम लोग ज्यादा कुछ महत्व नहीं देते हैं। इतना केवल मानते हैं कि तुलसी गार्डन और शालिग्राम साथ में है, इतना हम लोग मान लेते हैं। चिखला में यदि भी तुलसी महारानी तो बहुत अच्छा है, लेकिन और आगे बढ़ाना चाहिए। मतलब थोड़े गांव में अभी तक संस्कृति बची हुई है ना, बड़े बड़े जैसे जैसे अभी कितने समय तक ये बचेगा ये देखना पड़ेगा, तो हमें सब जगह अभी धीरे धीरे से एक संस्कृति को बढ़ानी है ताकि भगवान कृष्ण की सेवा तुलसी महारानी की सेवा चलती रहे, सही भाव से ये लोग करते रहे। कृष्ण के बिना गाय की सेवा तुलसी महारानी की सेवा ये पुण्य कार्य हो जाता है, जब कृष्ण को जोड़ देते हैं तो ये कार्य भक्ति के हो जाते हैं। तदीय सेवा, तदीय सेवा मतलब जो कृष्ण से संबंधित है उनकी सेवा, वो भी भक्ति के अंतर्गत आते हैं। कृष्ण की सेवा मतलब न केवल कृष्ण की सेवा, कृष्ण के अवतारों की सेवा, कृष्ण के भक्तों की सेवा, कृष्ण के धाम की सेवा, कृष्ण के नाम की सेवा, कृष्ण के अर्चा विग्रह की सेवा, कृष्ण के प्रसाद की सेवा, कृष्ण के सामग्री की सेवा, कृष्ण से जो भी कुछ संबंधित है जैसे यमुना गंगा तुलसी गाय उनकी सेवा, उनके ग्रंथों की सेवा, ये सब कृष्ण शब्द में सम्मिलित है। प्रभुपाद बताते हैं कृष्ण यानी कृष्ण अकेले नहीं है, कृष्ण मतलब ये सब कुछ आ जाता है उसमें। जब हम कहते हैं हम कृष्ण भक्ति करते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं, इसका मतलब है न केवल कृष्ण के लेकिन कृष्ण से जो भी संबंधित है उनकी भी हम सेवा करते हैं। इसलिए वैष्णव गाय तुलसी गंगा यमुना ये सब तदीय सेवा कहलाते हैं। तो वैष्णव सेवा भी भक्ति का ही एक अंग है, तुलसी सेवा गाय सेवा गो सेवा ये भी भक्ति का ही अंग है।
शिष्य की शाश्वत संबंध के बारे में प्रश्न है, तो मतलब जब जीव इस जगत से जब वो मुक्त हो जाता है जब गोलोक जाता है तो उनका संबंध मतलब वहाँ पर भी ऐसे रहता है?
कैसे रहता है?
मतलब क्योंकि ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो नित्य सिद्ध जो लोग आते हैं वो प्रचार करते हैं, लेकिन जो यहाँ पर जीव अपने साधना सिद्धि से अपने आप को सिद्ध करता है और वो फिर शिष्य बनाता है, तो उनका जो संबंध तो अभी शुरू हो रहा है, तो उससे पहले वो भी यहीं पर पतित था और उन्होंने अपने जीवन को यहाँ पर साधना करके अपना सिद्धि प्राप्त किया और उन्होंने दूसरों को उद्धार किया, लेकिन जो तो उनका संबंध अभी शुरू हो रहा है, लेकिन जो नित्य सिद्ध वो थे वो तो वहाँ से ही आते हैं और यहाँ पर जीवों को उद्धार करते हैं, तो उनका भी या पहले से वो रहता है इटर्नल के मतलब शाश्वत का मतलब ये पहले से होता है या अभी शुरू होता है?
यदि मेरा पिछले जन्म में मैंने भक्ति को स्वीकार किया था और मैंने गुरु भी स्वीकार किया लेकिन मैं भक्ति को पूरा नहीं कर पाया, गुरु स्वीकार किया सब कुछ किया महामंत्र का जप करना शुरू किया लेकिन मैं बूढ़ा था और लेट मैंने दीक्षा ले लिया, फिर मृत्यु हो गई, गोलोक वृंदावन नहीं गए पुनर्जन्म लिया, अभी दोबारा गुरु लिया तो फिर क्या,
मतलब वही गुरु आता है, वही जीव गुरु
नहीं, वही जीव के क्यों आएगा, क्यों हम उनको खींच के ले आएंगे नीचे है ना, आप समझ रहे हैं ना। हम जन्म लेंगे पुनः, उसके लिए हमारे गुरु को भी पुनर्जन्म लेना पड़ेगा ना, तो उनको वापस नहीं जाएंगे। तो हम पुनर्जन्म लेंगे इसलिए जब तक वो सारे शिष्य नहीं जाएंगे उनको जन्म लेते रहना पड़ेगा, और हर बार जन्म लेंगे और शिष्य लेते रहेंगे तो चक्कर चलता रहेगा, वो कभी जाएंगे ही नहीं है ना। तो ये इस दृष्टि से नहीं देखना है कि संबंध नित्य है, ये गुरु तत्व को समझना चाहिए। और व्यक्तिगत रूप से संबंध कैसा है, कहाँ क्या है, वो तो कृष्ण ही जानेंगे, इसके बारे में हम ऐसा कुछ कह नहीं सकते हैं। तत्व का संबंध है, ये एक संबंध रहता है। और जैसे प्रभुपाद है, अभी वो भगवान के धाम में गोलोक वृंदावन में है, लेकिन वो जहाँ भी जिस भी रूप में है वो नजर रख रहे हैं, दृष्टि रख रहे हैं हम सबके ऊपर, इतना एक निश्चित है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से हर एक शिष्य का उनके साथ क्या संबंध रहेगा वो तो कृष्ण ही जानते, ठीक है ना। प्रभुपाद की कृपा तो अभी भी है और रहेगी भी, है ना। नहीं तो यदि ऐसे हम नए निष्कर्ष पर पहुंचे तो ऐसे फिर एक गड़बड़ हो जाता है। अनेक जन्मों के गुरु पे कौन सा गुरु, क्या सब अलग अलग जीव हैं, सब एक तो जीव नहीं है, इसलिए हमें तत्व को समझ लेना चाहिए सर, ठीक है। तो सबको नींद आ गई होगी ना, अभी लेट हो गया, 9:45 को आए, ठीक है। निताय गौर हरि की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गोकुल धाम की जय, गौर प्रेमानंदे की।